छठा क्या है? अल हिल्मु मिम्मन सदरत अनहुल मुसीबा, जिससे मुसीबत पहुंची हो इसके साथ बुर्दबारी का मामला करना, यानी जिसको इंग्लिश में आप लिख लें खेल विद काइंडनेस का मौका मिल जाता है। जो हमें सताते हैं हमें उनको माफ़ करने का मौका मिलता है, और आपको पता है कि माफ़ी का अजर बहुत ज़्यादा, हलीम होने का। इन्ना इब्राहिम अला वाहुन हलीम, सूरत तौबा आयत 14 में आता है कि बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार थे, बड़े नरम थे। फिर इसी तरह एक हदीस है नबी सल्लम की, अशजो से कही थी आपने, सही मुस्लिम की रिवायत है। असल में एक काफ़िला आया, दूर से आए पसीने मेटे हुए और गर्मी सर्दी आपको पता है, तो काफ़िले के लोग जूं ही मस्जिद नबवी में आए जल्दी से आके टूट के अल्लाह के नबी से, आपसे बड़े उदास थे, आपको याद कर रहे थे, मिल रहे हैं, आप जिस्म पे स्मेल भी है, पसीना भी है, बू भी है, तो नागवारी का एहसास हुआ। लेकिन जो उनके सरदार थे उनका नाम अशजु अब्दुल कैस था, वो अपनी सवारी से उतरे, सवारी को बांधा, फिर दूर गए कहीं, साफ़ सुथरे हुए, नहाए धोए, साफ कपड़े पहन के नबी सल्लम को मिलने आए, बड़ी तहम्मुल की चाल चलते हुए। उस पे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन नफी कला खसलतें, ऐ अशजो तेरे अंदर दो खसलतें हैं, युहिब्बहुमल्लाहु ताला, जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है। कौन सी है? अल हिल्म वल अना, हिल्म तहम्मुल और अना। हम तो बाज दफा किसी का हाथ मरोड़ते हैं, कई दफा लोग हाथ मरोड़ते हैं, यकीन करें उंगलियां पिस जाती हैं, आपको गले मिलेंगे पसलियां टूट जाती हैं, वो ऐसी मोहब्बत का इजहार, समझ ही नहीं होता कि हम पे टूटी क्या बबला है, भाई मोहब्बत ही बड़ी आ गई, प्यार ही बड़ा आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बंदे को साफ सुथरा डिसेंट दिखना चाहिए, दीन के नाम पे हलचले और बाल बिखरे हुए और चल्ले बल्ले और बस जी मोहब्बत ही बड़ी और दीन वाले ही बड़े हो गए, ये अच्छा नहीं। कभी कभी ठीक होता है बच्चों के साथ, लेकिन आम तौर पे ये चीज़ और पन्नी होना चाहिए। तो इससे क्या पता चला कि हिल्म आ जाता है। अब सफर की मुसीबत थी, मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे बचा लिया। सातवां फायदा मुसीबतों के अंदर जो छुपा होता है वो क्या है? अल अफ़ु अन जानीहा वलाफीन अनिन नास। क्या मतलब है सातवीं चीज? ज्यादती करने वाले से दरगुजर करना, यानी अगर कोई हम पे ज्यादती करे ही ना तो हम दरगुजर किससे करेंगे, और हम दरगुजर नहीं करेंगे तो हमें अजर कैसे मिलेगा? अल्लाह ताला सूरत आले इमरान आयत नंबर 134 में फरमाते हैं, वलाफीन अनिन नास, यानी अच्छे लोग जो होते हैं उनकी तारीफों में एक खूबी क्या है कि वो लोगों को माफ करते हैं। फिर इसी तरह से सूरत शूरा आयत 40 में आता है, फमन अफा वसलहा फाजरुहू अल्लाह, यानी जो कोई माफ करे और इसलाह कर दे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। तो क्या पता चला कि आपको मुझे दूसरों से दरगुजर करने का मौका मिल जाता है, और जितना ज्यादा हम इस पे दरगुजर करेंगे हमारे दर्जे अल्लाह के यहाँ बढ़ेंगे। यकीन करें कि आप पे ज्यादती करने वाला आपका मोहसिन होता है। लिख ले ये बात, जिन रिश्तों को या जिन साथियों को जिन प्यारों को हम कोसते हैं ना, हाय इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाज़ औरतें वो कहती हैं, मैं इसको नहीं माफ कर सकती, क्यों? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई क्या बर्बाद की आपकी जिंदगी? इधर से ना होती कहीं और बर्बाद हो जानी थी, ये तो वैसे ही खत्म हो रही है। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी ने अपनी बीवी पे जुल्म किया, उसकी कदर नहीं की, तो क्या हुआ? 10 साल, 20 साल, 15 साल उसको हमेशा का अजर दिलवा दिया, उसके लिए खैर के रास्ते खोल दिए। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। देखिए कुछ लोग हैं ना, मसलन ये ग्लास रखा हुआ टेबल पे, मैं आपसे पूछूं बताइए इस ग्लास की क्या हालत है? कोई कहेगा कि आधा ग्लास खाली है, कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ है। खाली वालों ने यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक देखा, और जो कहेंगे भरा हुआ उन्होंने नीचे से ऊपर देखा। जवाब किसका दुरुस्त है? देखने में बात दोनों की ठीक है, मैथमेटिकली देख लें तो दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में जिन्होंने भरा हुआ कहा ये पॉजिटिव्स हैं और ऊपर वाले नेगेटिव्स हैं। हमारी आंखों की जो आई ग्लासेस होते हैं उसके भी तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, किसी को दूर का ठीक दिखता है, किसी को करीब का ठीक दिखता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अपने आप को हमेशा खैर वाला रखें कि इसमें कोई ना कोई खैर ही हुई, मुझे इससे फायदा ही होगा। आठवां फायदा क्या है? असब्र अलैहा, सब्र का मौका मिलता है। तकलीफ पे सब्र करेंगे तो फायदा होगा, और सब्र जो है वो क्या है? हुवा मूजिबुली मोहब्बत अल्लाह ताला व कसरत सवाबिही, के तकलीफों पे हमें सब्र करने का मौका मिलता है, और वो सब्र हमें अल्लाह की मोहब्बत लेने का हकदार बनाता है। इसके फिर दलाइल बहुत सारे हैं कि सब्र वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। मसलन सूरत आल इमरान आयत 146 में आता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। फिर इसी तरह सूरत जुमर आयत 10 में आता है, इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैरी हिसाब, बेशक सब्र करने वाले अपने अजर बेहिसाब दिए जाएंगे। फिर इसी तरह से सही बुखारी की एक रिवायत में आपने फरमाया, वमा ऊतिया अहदुन आतान खैरन व औसा मिन सब्री, कि जिस किसी को सब्र की तौफीक दे दी गई इससे ज्यादा बड़ी नेमत किसी को नहीं दी गई। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को, और यकीन करें सब्र का मौजू भी अलग से सुने, मैंने इसको शायद बीसियों एंगल से मुख्तलिफ तरीके से किया है। मुझे तो एक जुमला समझ आता है कि पूरे का पूरा दीन सब्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह आप कह नहीं सकते अगर सब्र ना करें एक खुदा पे। चारों तरफ चमकीले रंग बिरंगे खुदा तो हैं, हमारा ईमान बेचने खरीदने वाले बहुत है। ज़रा कोई मुश्किल में पड़ता है लोग कहते हैं चलो अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाओ, वहाँ से तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। अब अगर एक अल्लाह पे सब्र नहीं करेंगे तो आप तो दर दर पे जाएंगे, भटकेंगे। नमाज पढ़ सकते हैं अगर सब्र ना हो, क्योंकि नमाज ने ना बोल सकते ना खा सकते ना सो सकते ना सोच सकते, सब्र है। रोज़ा तो है ही निरा सब्र। हज कर सकते हैं अगर सब्र ना हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं अगर सब्र ना हो कि अपने माल को दूसरों से शेयर कर देना। कनात का नाम सब्र है, सिला रहमी सब्र से होती है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक सब्र है। तो सब्र ही असल में पूरे दीन का खुलासा है। इसमें मुझे याद आ रहा है एक लेक्चर कि उसमें हमने सब्र के सारे एंगल और इसकी मुख्तलिफ किस्में सीखी थी। तो सब्र करने का मौका जो है वो इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत का हकदार बनाता है। नवा फ़ायदा यानी नवा छुपा हुआ फ़ायदा मुसीबतों में क्या होता है, अलफराहु बिहा ली अजली फवाइदिहा, यानी नवा फ़ायदा क्या है कि उस मुसीबत के फ़वाद की बिना पर उसके साथ यानी उसके आने पर खुशी होना। ये क्या बात हुई, ज़रा समझिएगा इसको। पहली दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्ने माजा की, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन कानु लयफ़रहून बिलबलाई कमा तफ़रहून बिर्रखाई। इसको हाईलाइट करें। हमारे कल्चर में ऐसे किरदार हमें बहुत कम दिखते हैं, लेकिन आप सुन के देख लीजिए सहाबा कैसे थे। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन वो यानी नबी और नेक लोग आजमाइश के आने पर ऐसे खुश होते थे जैसे तुम आसूदगी के साथ खुश होते हो। आप कहते हैं ये सब्र का आला दर्जा, इस पे भी वो जो लेक्चर का जिक्र किया उसमें हमने सब्र के डिफरेंट एंगल पढ़े थे कि एक तो आता है कि मुसीबत आने पे बंदा सब्र करता है, दूसरा ये होता है कि मुसीबत ना आए तो बंदा तलब कर रहा होता है कि कोई मुश्किल आए और मैं उस पे सब्र करूँ। तो क्या पता चला कि सब्र की अगर अहमियत पता चल जाए तो हमें उसकी खुशी महसूस होने लगेगी, हम उस पर खुश होने लगेंगे, हम हाल दो हाल में चाल देते हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। फिर दसवां फ़ायदा क्या है कि अशुक्र अलैहा, तकलीफ़ में शुक्र करने का मौका मिल जाता है। बस आप देखिए एक मरीज़ है, जिस्म के अज़ा काटने हैं उसके, अब वो जिस डॉक्टर ने उसका हाथ काटा, मतलब शुगर में बाज़ दफ़ा जिस्म का कोई एक उस बेकार हो जाता है, पाँव काटना पड़ता है। क्यों, पाँव काटेंगे तो जिस्म बचेगा, कभी उंगली काटी कभी टांग काटी, क्या हम उस डॉक्टर के ऊपर केस करते हैं? बल्कि लोग तो उस तबीब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्यों कि उसने पाँव काट दिया और पूरा जिस्म बच गया। समझ आइए, सेहत याबी के लिए। इसी तरह मुसीबत आने पे बंदा अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह छोटी मुसीबत से टल गया हूँ, बड़ी नहीं आई। ग्यारहवां फायदा देखिएगा, तम ही सुहा लिज़ुनूबी वल खताया, इस मुसीबत का गुनाहों और ख़ताओं को दूर करना। ये तो पीछे हमने पढ़ा है ना कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, जब तकलीफ़ आती है ना तो हमारे पिछले गुनाहों के कफ़ारे होते हैं। तो क्या हम नहीं चाहते कि कफ़ारे हों? आप देखिए ना, प्यूरिफिकेशन का अमल ऐसे ही होता है ना, तो जब मुसीबत आए उसके अंदर एक छुपी हुई बात यह है कि इस मुसीबत को भी भूल जाए, पिछला कोई गुनाह याद करें जिसकी बुनियाद पे आपने कब्र में आजमाया जाना था या जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने जहन्नुम में दो चार डुबकियां देनी थी। तो बजाय उसके करने के अल्लाह ने दुनिया में साल मुसीबत डाल दी, एक साल बिस्तर पर डाल दिया, तो इस मुसीबत ने आपके वो गुनाह और वो मुसीबतें जो थी वो धो दी, और अल्लाह ताला हम सबको बगैर तकलीफों के ही माफ कर दे। फिर इसी तरह से इसके ऊपर बहुत सारी रिवायत आगे इंशाल्लाह आने वाली हैं सब्र की, हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं बारहवें फ़ायदे पे, और वो बारहवां क्या है, रहमत अहलिल बलाई व मुसाअदतुहुम अला बलवाहुम फन्नासु मुआफी व मुब्तलीजन, यानी अहले इब्तला कौन, जिस पे मुश्किल आई है, यानी जिन पर मुश्किल आई है उन पर शफकत और उनके साथ तआवुन करना। कुछ लोग आफियत में हैं और कुछ आजमाइश में हैं, तो तुम इम्तिहान में मुब्तला लोगों पर शफकत करो और आफियत के अता करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। थोड़ी सी ट्रिकी बात लग रही है, यानी एक है मेरे ऊपर तकलीफ़ आई तो मैं सब्र कर रही हूँ, दूसरा ये है कि मैं देख रही हूँ कि किसी दूसरे पे तकलीफ़ आई है तो मुझे उसमें क्या फ़ायदा मिला कि मैं जाके उससे हमदर्दी करूँ। यानी मुसलमानों को दूसरों की मुसीबतों पे नेकियां करने का मौका मिलता है। बस आपको पता है ना, हमारे दीन में ऐसा है कि अगर कोई फौत हो जाए तो उसके घर पे जाओ, ताज़ियत करो, उसका अजर है। दुआ है ताज़ियत की कि इन्ना लिल्लाहि मा ख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतसबिर वलतख्तसिब। और मैंने तो हर दूसरी जगह पे मैयत वाले घर में जाके लोगों से पूछा है, किसी को ये दुआ नहीं आती। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के बच्चे के इंतकाल पे ये दुआ पढ़ी थी कि मेरी बेटी गम न कर, इन्ना लिल्लाहि मा आता, जो ले लिया वो अल्लाह ही का था, इन्ना लिल्लाहि मा ख़ज़ा, जो था उसने ले लिया और जो आज तेरे पास है वो भी उसका है। क्योंकि हर चीज़ हमें एक ख़ास वक्त तक मिली है, बस सब्र कर और इस सब्र पे अजर मांग। यकीन करें ये दुआ पढ़ें सब्र आ जाता है। हम झूठे आंसू बहाते, टसवे बहाते, हाल दुहाल करते, घर वाले से सारी तफसील बार बार सुनते, हुआ क्या, फिर कैसे हुआ, लेकिन ये दुआ नहीं पढ़ते। ये आज हमारी बेबसी है। एक हमें मैयत की दुआ नहीं आती। आपको पता कितनी प्यारी दुआ, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहु वाफी वाफ़न्हु, तवील दुआ है और भी हैं। अभी पिछले दिनों कई अमवात हुई नौसलो शहर में, तो हम जाते थे वहाँ, लोगों को ये दुआ भी नहीं आती। लोग बैठते हैं, चलो जी फातह खानी करो, चलो जी हाथ उठाओ, और फातह में आप क्या पढ़ते हैं, एहदिन अस्सिरात अल मुस्तकीम। ये मरने वाले को इससे क्या लगे, सीधा रास्ता तो जिंदाओं को चाहिए। देखिए ना, जो सूरत फातह का तर्जमा है उसमें मुर्दों की कहाँ बात है, लेकिन एक रस्म चल पड़ी है ना फातह खानी की, तो चलो जी दुआ करते हैं। चलो जी तीन दफ़ा कुल वल्ला पढ़ी, सूरह फातह पढ़ी, मुंह पे हाथ फेरे, फिर बातें शुरू हो गए, फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, चने हैं, फ्रूट है, दिखा पी के आते हैं। और वो दुआ जो मैयत को फ़ायदा देनी है, हदीस में आता है कि मरने वाला ऐसे तड़पता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो वो तड़पती है, वो दुआ हम अपने मर्दों को देते ही नहीं है। हमने एक जगह ऐसे पेपर छुपा के ले गए और कुछ मर्द हजरात थे, तो उन्होंने उनको दिए कि आप लोग भी बैठे हुए हैं तो आप पढ़े। नहीं 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 हम कलमा पढ़ रहे हैं, नहीं 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 हम दुरूद पढ़ रहे हैं, और बातें सारी सियासत की और बातों की चल रही थी, कलमे से बड़ी कोई दुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि ये बेचारी जो फौत हुई हैं वो इनकी इस दुआ से महरूम रह गई हैं। तो याद रखिए कि जब किसी दूसरे पे मुसीबत आती है तो हमें भी उससे मौका मिलता है कि उनके साथ शफकत करें। फिर 13वां फ़ायदा क्या है, मारिफत कद्र नेमत आफ़ियती व शुक्र अलैहा फ़इन्न नेम ला तुरफ अक़दारुहा इल्ला बाद फ़क़्दिहा। बहुत ही प्यारी बात है ये कि आफियत की नेमत की कदरों कीमत को पहचानना और इस पे शुक्र करना, क्योंकि बिला शुबा नेमतों की कदरों कीमत इनके ना होने पर ही मालूम होती है। समझ आ गई है ना, मुसीबत आती है तो हमें फिर आम दिनों की कदर आती है। मतलब मैं बीमार हूँ, मेरा गला ख़राब है, तो मुझे कदर किसकी आई कि रोज़ नहीं ख़राब होता। देखिए बीमार तो हम कभी होते हैं ना, लेकिन सेहतमंद हम हमेशा होते हैं माशाल्लाह। कभी सदमा, कोई मौत की खबर चले, अल्लाह ताला सबको बचाए, महीने में एक ही दफ़ा खबर आती है ना कोई, तो 29 दिन तो हम ठीक होते हैं। तो ये मतलब है कि जब मुश्किल आती है ना, फिर हमें एहसास होता है कि हम कितनी नेमतों में पल रहे हैं और हमारे लिए अल्लाह ताला ने खैर रखी हुई है। और नेमतों की कदर तो तभी होगी जब बंदे को उसके अजर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 14वां फ़ायदा क्या है, मा अद्दल्लाहु ताला अला हाज़िहिल फवाइद मिन सवाबिल आखिरती अला इख्तलाफी मरातिबिहा। यानी इख्तलाफे मरातिब के साथ, मरातिब कहते हैं मरतबे को, रैंक, डिफरेंट लेवल्स के साथ अल्लाह की जानिब से इन फवायद की बिना पर तैयार करदा सवाब आखरत। आप इसको आसान समझ लीजिए, आसान लफ्ज़ों में, कि मुसीबतों के ऊपर सब्र करने से हर बंदे को अपने सब्र के मुवाफिक आखिर में बदला मिलेगा। कुरान में ये आयतें हैं, आप पढ़ेंगे इसके हवाले भी, कि जब एक इंसान सब्र थोड़ा करेगा ना तो उसको छोटा दर्जा मिलेगा, ज़्यादा सब्र करेंगे ऊंचा ऊंचा, हो सकता है इंसान 100वें दर्जे पे पहुंचे। अहदीस इसमें बहुत प्यारी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बाज़ दफ़ा अल्लाह एक बंदे के लिए जन्नत में आला मुकाम पर जगह लिख देता है। मसलन आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई कहता है कि इस शख्स को फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में सफ़र करना, अब वो नाम तो लिख दिया उसका फर्स्ट क्लास में, लेकिन पैसे उसके पास सिर्फ इकोनॉमी क्लास के हैं, अब क्या किया जाए। अल्लाह ताला वो जो बीच का डिफरेंस है ना वो किसी तकलीफ में डाल के पूरा कर देते हैं। जो फरिश्तों इसके अमल तो 70वें दर्जे की जन्नत के थे, लेकिन इस पे एक मुसीबत डाली, 30 किस्म का सब्र करके ये 100वें दर्जे पे पहुंच गया। बात समझ गया। कभी कभी बच्चे के पास पैसे थोड़े होते हैं ना, लेना चाहता है, जमा कर रहा है कोई चीज लेने के लिए, तो माँ को बड़ा प्यार आता है, ले जाती है उसको वो खिलौना दिलाने के लिए, कहती है चलो तेरे पास कह दे। अब वो चुन्निया ठनिया करके वो 15-20 रुपए निकलते हैं, माँ कहती है ये लो, ये बाकी 100 रुपया मैं डालती हूँ, मेरी तरफ से डाल दो। ये करता है अल्लाह ताला कि आपके मेरे लिए जन्नत में दर्जे बढ़ा देता है। फिर 15वां फायदा क्या है, अल खामिसत अशरता मा फी तैयहा मिनल फवायद अल खफीयती, अल्लाह की जानिब से इसमें रखे हुए मख्फी फायदे। वही जो बात शुरू में पिछले पॉइंट में आई है ना कि आसान तक रहु शैयन वजह जल्लल्लाहु फीही खैरन कसीरा, सूरत निसा आयत 19 है, यानी अल्लाह ने उसमें कुछ फवायद छुपा के रखे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। फिर 16वां फायदा क्या है, इन्नल मसाइब व शदाइदा तमनउ मिनल अशरी वल बतरी वल फखरी वल खुयलाई व तकब्बुरी व तखय्युरी। अब आप सिर्फ इतने लफ्जों से समझ गए होंगे कि ये फायदा तो हमने कभी मुसीबतों का सोचा नहीं है। जरा सुनिएगा उर्दू में, बिलाशुबा मुसीबतें, सख्तियां, नाज, नखरे, फखर, गरूर, तकब्बुर और शेही से बाज रखती हैं। समझ आई? ये सारे लफ्ज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब शादी में होते हैं, मौत वाले घर में कभी ये शेखियां बिगाड़ी हमने? ये है यानी खुशियों में हमारे अंदर फख्र, गुरूर, तकाबुल और दिखावा और रियाकारी आ जाती है, लेकिन मुसीबतों में वो नहीं होती। फिर इसके आगे लिखा है कि अगर नमरूद मुफलिस, बीमार, बहरा, अंधा होता तो इब्राहिम से इसके रब्बे ताला के बारे में झगड़ा ना करता। तीसरे पारे में आते हैं ना, अल्लाह सी खाज इब्राहिम अफी रब्बहू, तो वही बात इधर की गई कि नमरूद का पेट भरा हुआ था तभी तो अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहा था ना, अगर ये सब कुछ ना होता तो उसके अंदर ये नखरा नहीं होना था। और बादशाहत के गरूर ने उसे इस बात पर आमादा कर दिया कि अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने वहां कहा था ना कि दी थी उसको अल्लाह ने बादशाहत। यही बात है। इसी तरह फिरौन के बारे में आता है, वलविब तुलिया फिरौन भी मिसली जालिका लमा काला, कि अगर फिरौन भी आजमाया जाता तो ये जुमला कभी ना कहता कि अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं बड़ा रब हूँ। तो क्या पता चला कि नेमतों में अकड़ते हैं। आज भी देखिए कभी किसी खुशी के मौके पे लोगों का पहनना उठना चाल ही बदल जाती है, ऐसे लगता है कोई हमसा हो तो सामने आए। हम जैसा कौन, हम 30 मार खां, हम लाखों में एक, हजारों में एक, तो मुसीबतों में कम अज कम ये खतरा तो नहीं होता, उसमें तो बंदा भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। बहरहाल फिर इसी तरह से सूरत तौबा आयत 74 में, वमा नकमू इल्ला अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, के इनको और इसके अलावा और किसी बात के इंतकाम नहीं ले रहे कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से और इनके रसूल ने इन्हें दौलतमंद कर दिया। फिर इसी तरह से सूरत अलक की आयत 6-7, इन्ना लिल इंसानी लयतगा अर्रआहुस्तगना, कि इंसान देखो आपे से बाहर हो जाता है और खुद को बड़ा दौलतमंद समझता है। वो एक बड़ा छोरा सा लफ्ज है हमारे कल्चर में, नौ दौलतिया, सुना वह? नौ दौलतिया क्या होते हैं, थोड़ी सी दौलत आती है उसकी शोखियां बिगाड़ने लगते हैं। यही है इस आयत में कि थोड़ा सा माल मिलता है तो अपने आप को पता नहीं वो फन्ने हाँ समझने लगता है। और क्या कहते हैं इसके ऊपर, कोई मुहावरे याद है आपको? यानी आप देखिए कि आज हमारे कल्चर में भी कई लोगों की चाल ही बदल जाती है, जैसे वो तो नाम बदल जाते हैं। किसी ने कहा पाकिस्तान में था तो भज्जा था, बाहर आ गए तो परवेज साहब बन गए। तो अब ये फज्जा साहब और परवेज साहब में फर्क किसका है, कि वो जो रुपए थे वो क्रोन में बदल गए, पता नहीं जिस दिन अमेरिकन करेंसी में बदलेंगे या जिस दिन वो किसी यूके की करेंसी में बदलेंगे तो वो परवेज साहब के साथ कोई दो नाम और भी लग जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, जिस घर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। तो याद रखिए दौलत बंदे के बहुत सारे ऐप छुपा लेती है, अल्लाह ताला मुश्किलात में डालकर इंसान की असलियत दिखा देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस और भी हैं, सूरत शूरा आयत 27 है, सूरत खुद आयत 116 है, आप खुद पढ़िएगा, आपका दिल खुल जाएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जब बंदे को मुश्किलात में डालते हैं तो उसमें उसके ईमान का ज़्यादा इम्तिहान होता है इसकी निस्बत कि वो खुशियों में हो। और कितनी सिक्योरिटी है ना, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, अपने आप को हम अलग रखें।